नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित, फिजी की संसद को भी संबोधित किया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा, संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। बीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई का आदेश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में बांग्लादेश की स्थिति पर समीक्षा की गई। तमिलनाडु के सुलार में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आज से शुरू। पेरिस ओलंपिक में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टिपल चेन्स फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा। और ओलंपिक खेलों में हॉकी में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना जर्मनी से होगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने फिजी की संसद को संबोधित करते हुए दोनों देशों के बीच जारी 75 वर्षों के राजनयिक सहयोग को याद किया। एक रिपोर्ट।
फिजी यात्रा के बाद राष्ट्रपति मुर्मू कल से 9 अगस्त तक न्यूजीलैंड के सफर पर रहेंगी। वो गवर्नर जनरल सिंडी कीरो के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड जाएंगी। वहां वो सिंडी कीरो और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सोन के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी, शिक्षा संबंधी एक सम्मेलन को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू की विदेश यात्रा का अंतिम पड़ाव तिमोर लेस्टे है। वो 10 अगस्त को वहां पहुंचेंगी। इन यात्राओं से इस क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलने की संभावना है। साथ ही इसके जरिए प्रशांत और दक्षिण पूर्व देशों के साथ भारत के संबंधों को आगे बढ़ाने की देश की प्रतिबद्धता पर भी जोर परिलक्षित है। फिजी से श्री साई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज सुवा स्टेट हाउस में फिजी के राष्ट्रपति रातु विलियामे मैवलिली कटुनेवेरे ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत फिजी संबंधों को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि स्टेट हाउस में उन्होंने राज्य प्रमुखों के आवासों का सौरीकरण परियोजना के विकास की भी समीक्षा की। यह परियोजना भारत के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसका उद्घाटन पिछले वर्ष फरवरी में किया गया था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा है कि संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। ढाका के बंग भवन में सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की उपस्थिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
कल रात टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय संसद को भंग कर यथाशीघ्र अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह निर्णय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक में लिया गया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अंतरिम सरकार निर्वाचित सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए जल्द से जल्द अगला आम चुनाव कराएगी। बैठक में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष खालिदा जिया और अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का भी फैसला किया गया। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अन्य मंत्री भी शामिल हुए। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कल नई दिल्ली में पहली महिला पर्वतरोहण टीम को उत्तराखंड स्थित माउंट मुकुट पूर्व के अभियान के लिए रवाना किया। 12 महिला पर्वतरोहियों का यह दल 23,392 फीट ऊंचे मुकुट पूर्व की चोटी पर चढ़ाई करेगा और वहां राष्ट्रीय और सीमा सुरक्षा बल का ध्वज फहराएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि यह पहली बार है जब महिला पर्वतरोहियों का दल 23,000 से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करेगा। उन्होंने कहा कि बीएसएफ कई वर्षो से पर्वतरोहण को बढ़ावा दे रहा है और बल के कई सदस्यों ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। नई दिल्ली में आज भारत की मेजबानी में बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल के व्यावसायिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जबकि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेता इसे संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के कई मंत्री, उच्च सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, उद्यमी और उद्योग जगत से जुड़े लोग भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बिम्स्टेक व्यावसायिक शिखर सम्मेलन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की 300 से अधिक हितधारकों को एक साथ लेकर आएगा, ताकि इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की सुविधा दी जा सके और व्यापारिक सुविधाओं, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा, समावेशी विकास और सतत विकास के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रास्ते तलाशे जा सकें। भारत आज से तमिलनाडु के सुलार में अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। इस युद्धाभ्यास में करीब 30 देश भाग लेंगे, जिनमें से 10 देश अपने लड़ाकू विमानों के साथ शामिल होंगे। नई दिल्ली में वॉइस ऑफ चीफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह ने बताया कि अभ्यास का पहला चरण आज से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में और दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित होगा। एयर मार्शल एपी सिंह ने बताया कि इस अभ्यास में भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों और उपकरणों का प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के तेजस, राफेल, मिराज 2000, जगुआर, मिग-29 और अन्य लड़ाकू विमान इस अभ्यास में शामिल होंगे। तेलंगाना में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना में जल भरने के बाद कल इसके 16 द्वार खोल दिए गए, जिससे 1,63,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस परियोजना में रात 8 बजे तक 3,16,000 क्यूसेक पानी जमा हो गया था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले सुबह में इसके 6 द्वार खोले, लेकिन जल की यथास्थिति बरकरार रखने पर अधिक पानी छोड़ने के लिए 10 और द्वार खोल दिए गए। इसके अतिरिक्त 8,000 क्यूसेक पानी नागार्जुन सागर की दाहिने ओर की नहर में और 5,000 क्यूसेक जल बाई तरफ की नहर में छोड़ा गया। नागार्जुन सागर परियोजना में जल स्तर 584.4 फीट दर्ज किया गया, जबकि इस जलाशय की पूर्ण क्षमता 590 फीट है। जिले के कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बताया कि इस क्षेत्र में इस वर्ष 2 फसलों के लिए सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जिले में सिंचाई के लिए बने जलाशयों को भी नहरों के माध्यम से भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में जल प्रवाह को देखते हुए इसके द्वारों से पानी छोड़ने का निर्णय आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को सूचित करने के बाद लिया जाएगा। उत्तराखंड में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे हुए 1,400 से अधिक लोगों को कल सुरक्षित निकाल लिया गया। केदार घाटी में मौसम साफ होने पर कल हवाई मार्ग से बचाव कार्यों में तेजी आई। एक रिपोर्ट।
भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से तीर्थयात्रियों के बचाव में आसानी हुई। 136 तीर्थयात्रियों को वायुसेना और राज्य सरकार के हेलीकॉप्टरों से निकाला गया, जबकि 509 व्यक्तियों को पैदल मार्ग के जरिए केदारनाथ से लिंचोनी लाया गया। केदारनाथ में अब केवल पुजारी, दुकानदार और घोड़े तथा पालकी वाले और लगभग 50 ऐसे तीर्थयात्री बचे हैं जिन्होंने वहीं रुकने का विकल्प चुना था। 31 जुलाई को बादल फटने और भारी वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया। सेना ने केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर पैदल यात्रा के लिए पुल बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा दिव्यांगों, बीमार और बुजुर्ग लोगों को ले जाने के लिए सोनप्रयाग में ट्रॉली भी लगाई गई है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद कल शाम अचानक आई बाढ़ से जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर जलभराव की सूचना है। इसके कारण वाहनों का आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। स्थिति को देखते हुए गुवाहाटी नगर निगम क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सहित सभी शिक्षा संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमोत्तर और पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक बड़े पैमाने पर और कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले इलाकों और सिक्किम में आज भारी से मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में इस महीने की 10 तारीख तक भीषण वर्षा की संभावना है। इसमें यह भी कहा गया है कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में आज बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तमिलनाडु, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 2 दिन तक भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी इस सप्ताह तेज आंधी और गरज के साथ मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। 1873 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज तड़के 69 वाहनों में रवाना हुए। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक से।
बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक का मुकाबला खेलने उतरे लक्ष्य सेन अपना मैच मलेशिया के जीजिया ली से 21-13, 16-21 और 11-21 से हार गए। इसी स्पर्धा का स्वर्ण पदक डेनमार्क के विक्टर एक्सेसन ने बरकरार रखा। शूटिंग में मिश्रित युगल के कांस्य पदक मैच में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका चीन की जोड़ी से 44-43 से हार गए। महिला कुश्ती के 68 किलो भार वर्ग में निशा दैया ने अपना पहला बाउट यूक्रेन की तेतियाना रिज़को को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया, जहां वे उत्तर कोरिया की पाक सोगुम से कुश्ती के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। कल शाम पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में अविनाश साबले ने 8:15.43 के समय के साथ अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहकर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी से बात करते हुए अविनाश,
टोक्यो में मैं फाइनल में नहीं पहुंच पाया था, सक्सेस टाइम मांगता है और वही मेरे साथ 2 साल से हो रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं अच्छे फिटनेस के साथ जा रहा था और अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, लेकिन इस साल की जो तैयारी है मैं पूरा सीजन यही सोच के तैयारी कर रहा था कि मुझे हीट्स को टारगेट करना है।
आज टेबल टेनिस में पुरुष टीम स्पर्धा में भारत का मुकाबला चीन से होगा। कुश्ती में 50 किलो भार वर्ग में विनेश फोगाट जापान की यूई सुसाकी से बाउट खेलकर अपने ओलंपिक अभियान की शुरुआत करेंगी। वहीं पुरुष हॉकी में भारत का मुकाबला होगा सेमीफाइनल में जर्मनी से। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
वहीं कावा महिला वॉलीबॉल लीग के फाइनल मैच में मेजबान नेपाल ने कल मालदीव को 3-0 से हरा दिया। अपने पहले मैच में नेपाल ने श्रीलंका को 3-0 से हराया था, जबकि दूसरे मैच में उसने खिताब के दावेदार भारत को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि रविवार को तीसरे मैच में नेपाल का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और ईरान ने उसे 3-2 से हरा दिया था। भारत ने अपने अंतिम लीग चरण के मैच में श्रीलंका को हराया। नेपाल, ईरान, श्रीलंका, भारत और मालदीव की टीमें कावा महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। कल सेमीफाइनल में पहले स्थान पर रहने वाली टीम चौथे स्थान की टीम से जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम तीसरे स्थान की टीम से खेलेगी। इसके बाद 7 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कारण मछली पालन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। श्री राजीव रंजन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल के कारण मछली उत्पादन में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद फरहत। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होने की खबर आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना ने देश छोड़ा, भारत पहुंची। अमर उजाला की सुर्खी है, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा। स्थानीय शेयर बाजारों में जोरदार गिरावट की खबर कई अखबारों ने प्रकाशित की है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, दुनिया के शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स धड़ाम। पंजाब केसरी की सुर्खी है, शेयर बाजार क्रैश, 17 लाख करोड़ रुपए की चपत। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। डेथ चैम्बर बन गए हैं कोचिंग सेंटर, छात्रों के जीवन से हो रहा खिलवाड़, दैनिक जागरण की सुर्खी है। भविष्य के अपराध को पहले ही बता देगा एआई, सुरक्षा बलों ने तैयार की योजना, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने एआई सिक्योरिटी यूनिट की घोषणा की, दैनिक भास्कर की खबर है। डमडम की नाद से गूंज उठी महाकाल की नगरी, बना डमरू बजाने का विश्व रिकॉर्ड, राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान आकर्षित कर रही है। कोविड 19 से ठीक हुए लोगों को थकान ने सबसे ज्यादा परेशान किया, सांस फूलना, स्वाद में कमी, सरदर्द, खांसी, हल्का बुखार जैसे लक्षण भी सामने आए, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित, फिजी की संसद को भी संबोधित किया। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने कहा, संसद भंग करने के बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन होगा। बीएनपी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की रिहाई का आदेश जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक में बांग्लादेश की स्थिति पर समीक्षा की गई। तमिलनाडु के सुलार में पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आज से शुरू और पेरिस ओलंपिक में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टिपल चेन्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।